ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यत् अध्रुवस्य देहस्य स अनुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् गृह क्षेत्र वसूनि च। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित हैं ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थाई मानता है। तात्पर्य, भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति सनकी होते हैं जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गंवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता कि स्वयं पागलपन के गहरे अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थाई मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर देश समाज तथा अन्य साज सज्जा को अस्थाई मान लेता है। घर जमीन आदि को अस्थाई मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मोहाद गृह क्षेत्र वसूनि, मोह बस ही भौतिकतावादी अपने घर अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि होती है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाशविक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है, किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
माता देवहूति ने भगवान से पूछा है, विरागो जैन पुरुषो भगवन सर्वतो भवे आचक्ष जीव लोकस्य विविधा मम संस्कृति। हे प्रभो, जिस बात को सुन करके मनुष्य में वैराग्य आ जाता है, संसार से मन अनासक्त हो जाता है, उस बात को अर्थात जीवों की संस्कृति को आप हमसे बताइए। जीव किस प्रकार इस संसार में, प्राकृत जगत में दुख भोगते हैं, पड़े हुए हैं, इसको बताइए। देवहूति भगवान का भक्त है। भगवान ने गीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार से सुकृति जन मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त किसी दुख से, शारीरिक दुख से या किसी प्रकार के दुख से जो दुखी हैं वे मेरी शरण लेते हैं, या जिज्ञासु परम सत्य को जानने के लिए जिनको लालसा होती है वे मुझसे ही चाहते हैं उत्तर, उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जैसे अर्जुन, उद्धव इत्यादि, और माता देवहूति भी जिज्ञासु भक्तों में हैं। ये बहुत बड़े सम्राट की पुत्री हैं और पति तो कर्दम जी महामुनि थे ही, और पुत्र स्वयं भगवान। तो देवहूति को ये जिज्ञासा है, भगवान से जानना चाहती है कि जीव इस संसार में किस प्रकार भटकता रहता है, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी इस पृथ्वी पर विविध योनियों में जन्म लेता है, उसकी कैसी चेतना होती है, क्या स्थिति होती है, कृपया वर्णन कीजिए। देवहूति की ये जिज्ञासा अपने लिए भी है और जीवों के हित के लिए, मनुष्य के हित के लिए है, इसे अवश्य सुनना चाहिए। हमारी क्या स्थिति है इसको हम नहीं जानेंगे तो कैसे यहां से छूटेंगे। हमने देखा है जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, हमको कहाँ जाना है, कहाँ हमारा घर है, हमारे स्वजन कौन हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कृपा बस बता देता है कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे ये पिताजी हैं, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम इस साधन से वहां जा सकते हो, तो यह बहुत बड़ा उपकार है ना। तो इस संसार में, इस प्राकृत जगत में हम ऐसे ही सभी जीव भूले हुए हैं, पागल हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण जपने वालों को कुछ लोग क्रेजी समझते हैं, लेकिन क्रेजी कौन है जो देह को मेरा मानता है, मम मानता है। जदा ध्रुवस्य देहस्य, यह देह अध्रुव है। ध्रुव का अर्थ है अचल और अध्रुव का अर्थ है क्षणिक, टेम्पररी। यह देह सदा नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। यह केवल विनाशी ही नहीं है, वास्तविक अर्थ में विनाशी का अर्थ है कि प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, परिवर्तनशील है। आज जो हमारा शरीर है ये कल नहीं रहेगा, इसमें बहुत चीजें बदल जाएंगी। शरीर के कण अर्थात परम अणु बहुत छोटे छोटे अंश नष्ट होते रहते हैं और बनते रहते हैं, परंतु बनते हैं उनका परसेंटेज कम होता है, बिगड़ने का ज्यादा रहता है। एक दिन नष्ट होते होते पूरे बिखर जाते हैं कण, और तब शरीर मृतक कहा जाता है। परंतु यह मृतक तो सब समय है और सब समय बदल रहा है। हमारे शरीर में जो खून है, हड्डी है, चर्म है, ये सब बदलते रहते हैं। नया खून आता रहता है, खून के परमाणु सब बदल जाते हैं। यहां तक कि मनुष्यों की हड्डियां भी बदलती रहती हैं, हड्डी भी टोटल बदल जाती है। हमने पढ़ा एक पुस्तक में कि 3.5 साल में हमारा शरीर पूरा बदल जाता है। ऐसे रोज रोज तो बदल ही रहा है, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, लेकिन 3.5 साल में टोटल शरीर बदल जाता है सबका। मल मूत्र के मार्ग से, मुख से, सांस लेने से, वो सब परम अणु बहुत छोटे कण निकलते रहते हैं। इस तरह शरीर का नाश होता रहता है। अंत अंत इमे देहा, ये देह सभी अंतवान हैं, अंत होता रहता है। हम लोग देखते हैं और शब्द का प्रयोग करते हैं कि शिशु कुमार हो गया, कुमार बच्चा हो, जवान हो गया, और जवान वृद्ध हो गया, वृद्ध मर गया। लेकिन ये प्रश्न होता है कि कौन जवान हुआ? जो बच्चा शरीर था वह जवान नहीं हुआ, जवान शरीर टोटल दूसरा है। वो बच्चा मर गया, वो शरीर बदल गया, दूसरा शरीर युवक हुआ, और अन्य शरीर ही वृद्ध हुआ, क्योंकि शरीर तो हमेशा बदलता रहता है, पर आत्मा नित्य है। वो किसी भी शरीर में या किसी भी अवस्था में अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, वही सोचता है। बच्चा भी सोचता है मैं वही हूँ जो पहले था और अभी भी हूँ। युवक होने पर वो सोचता है मैं वही हूँ जो एक दिन बच्चा था, और वृद्ध सोचता है मैं वही हूँ जो युवक था। लेकिन वह तो है जीवात्मा, आत्मा के रूप में देखा है तो वही बच्चा था, और वही युवक था और वही वृद्ध है, परंतु देह नहीं है, देह बदलता रहता है। इस समय से जो 3.5 साल का है वो शरीर मर गया, नया शरीर है। कोई कहे कि हम तो देखते हैं, दिखाई एकदम पड़ते, आकृति वही है, मुख की आकृति, शरीर की आकृति है बस, लेकिन उस शरीर के भीतर जितने भी अणु थे, कण थे, वे सब नष्ट हो गए। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे नदी की धारा बहती है, नदी बहती है, नदी की धारा वही है, नदी वही है, लेकिन नदी में बहता हुआ जल वही नहीं है जो कल था, जल बह गया, आकृति रह गई, दिखाई पड़ती है कि नदी है, धारा वही है, लेकिन धारा वो नहीं है, सब पानी बह गया। इसी प्रकार शरीर के सभी परमाणु बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, तो फिर मरने से क्या डर है लोगों को? जब शरीर बदल ही रहा है प्रत्येक क्षण, तो एक दिन बदल गया, नया क्या हुआ है? नया कुछ भी नहीं हुआ, जो बदल रहा है वो बदल गया, फाइनल बदल गया। अब जीव दूसरे शरीर में जाता है, अपने शरीर के बारे में अध्ययन करके और अपने विषय में जान लेना चाहिए, आत्मा के विषय में। तो आत्मा अविनाशी है, भगवान कहते हैं अविनाशी तद्विधि जेन सर्वमिदं ततम, जो चेतना के रूप में सारे शरीर में व्याप्त है वह आत्मा तो अमर है, नहीं मरता है। अविनाशी तो तद विद्धि जेन सर्वमिदं ततः, जेन जिस आत्मा से सारा शरीर व्याप्त है, अपनी चेतना बिखेर करके उस शरीर को जीवित रखता है। तो शरीर में जो चेतना है वो शरीर की नहीं है, वो है आत्मा की। तो एक दिन आत्मा शरीर को छोड़ देता है, तो इस तरह यह शरीर अध्रुव है, क्षणिक है। क्षण का अर्थ होता है एक अवसर, एक थोड़ा समय, थोड़े समय के लिए यह शरीर है, तो इसे कभी नित्य नहीं मानना चाहिए कि यह हमेशा रहेगा। जद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस दुर्मति, भगवान कहते हैं दुर्मति ही इस प्राकृत जगत में जीव दुर्मति हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पथ भ्रष्ट, कहाँ जाना है उसको भूल गया, अर्थात पागल है। जो सबसे बड़ा पागलपन है देह में आसक्ति, पहली आसक्ति देह में और देह के बाद सानुबंध में, देह के जो साथ बंधे हुए हैं, देह के साथ हैं, जैसे स्त्री और पुत्र, ये अनुबंध हैं, देहानुबंधी हैं, स्वरूपानुबंधी नहीं है। हमारा स्वरूप है ये नहीं है, वास्तव में आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, पत्नी के साथ या पुत्र के साथ देह का संबंध है, देहानुबंधी है। पर इन देहानुबंध में फंसा हुआ जीव, चूंकि उसकी मति खराब हो गई है, दुर्मति दूषित मति हो गई है, तो इसलिए देहानुबंधी की बात छोड़ दीजिए, और भी जो वस्तुएं हैं उनको भी ध्रुव मान लेता है। देह तो रहेगा नहीं, तो देह के अनुबंधी जो वस्तुएं हैं जैसे पुत्र स्त्री आदि ये सभी नहीं रहेंगे, तो फिर घर आदि के विषय में क्या कहना है। लेकिन यह दुर्मति जीवात्मा मोहात अज्ञान से ध्रुवाणी मन्यते गृह क्षेत्र वसुनिच, घर को खेत को और धन को नित्य मान लेता है। इस जगत में ये देह क्षणिक है और देह से संबंधित वस्तुओं को नित्य मान लेता है। कितना बड़ा ज्ञान है। गृह क्षेत्र वसुनिच, घर को अपना मान लेता है, ध्रुव मान लेता है। जब तक देह है तभी तक घर का संबंध है, और जब जीवात्मा देह में नहीं रहता है तब देह को कहीं भी फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। ये घर टेम्पोररी है, खेत टेम्पोररी है, और वसुनी वसु वसु कहते हैं धन को। जो धन में लिप्त रहता है या धन का काम करता है उसको वैश्य कहते हैं। वसु से वैश्य बना हुआ है। तो ये भी जो भी संबंध है वस्तुओं से या व्यक्ति से, ये सब देह के संबंध है, और देह नाशवान है, देह बदलता रहता है और एक दिन पूरा बदल जाता है। तो जब देह ही परिवर्तनशील है, क्षणिक है, तो फिर देहानुबंधियों के लिए क्या कहना, और फिर उसके भी संबंध जुड़े हुए लोगों से क्या कहना। तो स्त्री पुत्र से भी संग छूटेगा, देह का संग छूटने से ही सारा संबंध छूट जाता है। यह बहुत बड़ा अज्ञान है। कुछ लोग अज्ञान बस पूछते हैं कभी कभी कि हमारी पत्नी के साथ हमारा क्या संबंध रहेगा। जिज्ञासा नहीं करते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि और आसक्ति हमारी हो। एक बार कलकत्ता में मैं गया था गौर पूर्णिमा के अवसर पर, तो एक व्यक्ति के यहां ठहरा था। तो वहीं पर एक पत्रा देखने वाले ज्योतिषी टाइप के एक पंडित जी आ गए। तो मैं जिसके यहां ठहरा था उसकी पत्नी 3 साल पहले छोड़ करके कहीं चली गई थी। वो तो बेचारा बड़े दुख में था। तो पूछा उससे पंडित जी से कि ये बताइए कि हमारी स्त्री से हमारा संबंध कितने जन्म से है। तो पंडित जी ने कह दिया देख करके पतरा, वो ऐसे देख रहे झूठ मूठ के, देख करके कहे कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी पत्नी के साथ 7 बरस से है, 7 जन्म से। तो वो जब व्यक्ति चले गए गृहस्थ अपने घर में कुछ काम के लिए, तो मैं पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये 7 जन्म से संबंध है तो ये जन्म मिला करके ना। तो वो कहे कि हाँ, तो मैं कहा कि वो तो 6.5 जन्म ही हुआ ना, वो तो चली गई है। तो पंडित जी कहते हैं, अरे एक जन्म का ठिकाना नहीं है, 7 जन्म। इसको ऐसे ही बता दिया कि सुन करके खुश हो गए और कुछ दक्षिणा हमको दे देगा बस। तो मैं कहा कि तो 7 जन्म क्यों बताए, कह देते 1000 जन्म से 7 है। तो कहे कि अरे इस जन्म का कोई ठिकाना ही नहीं, वो चली गई और 7 जन्म कहां से 7 हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। तो इस तरह ये संबंध सब क्षणिक है, कब तक है कुछ भी पता नहीं, और एक दिन तो टोटल रहेगा नहीं, देह ही नहीं रहेगा, संबंध क्या रहेगा। तो यही हालत घर की है, खेत की है और धन की है। परंतु जीव इतना ज्ञान में है कि इस टेम्पोररी जगत में, यहाँ क्षणिक संसार में, इन्हीं सब वस्तुओं को और व्यक्तियों को मेरा 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 कहता रहता है, और उसी को जुटाने में, उनसे मिलने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। और कुछ भी वस्तु मिल जाए, कितना भी अच्छा घर मिल जाए, धन काफी हो जाए, लेकिन वो सब छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जा सकता है। ये जदा ध्रुवस्य देहस्य, ये अध्रुव है देह, विनाशी है, और इसी नश्वर चीज को, वस्तुओं को ध्रुवाणी मान्यते, अपना मान लेता है नित्य साथी। हम जुग जुग साथ रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, यह खेत हमारा और ये धन हमारे, अपने को सौभाग्यशाली मान लेता है। कुछ नश्वान वस्तुओं को प्राप्त करके जो अविनाशी आत्मा है, वो नश्वान वस्तुओं से अपने को सुखी मानता है। कितना अज्ञान है। देह नहीं रहेगा और देह के अनुबंधी पदार्थ नहीं रहेंगे, स्त्री पुत्र घर खेत ये सब नहीं रहेंगे। यह है संसार में हमारी स्थिति, जहां जिस देश में जन्म लेते हैं, जिस स्थान में जन्म लेते हैं और जिस काल में, तो उस स्थान में और काल में ये सब वस्तुएं रहती हैं और मिल जाती हैं, और उन्हीं को जीव मान लेता है, ये मेरा है, ये मेरी है, इसी अज्ञान में पड़ा रहता है। और जो अपना है, श्री भगवान कृष्ण अपने हैं, उनके भक्त अपने हैं, उनके प्रति ममता नहीं हो पाती है। इससे पागल आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मान ले और अपने पिता को, भाई को न माने तो दुखी होगा ना। वो चोर कहीं उसको ले जा करके लूट लेंगे, उसके पास रहेगा भी कुछ नहीं, लेकिन उसको सुखी नहीं कर पाएंगे। तो इस अनाश्रित संसार में हम ऐसे भटक रहे हैं। ये सबसे बड़े बंधु हमारे हैं कृष्ण भगवान, और वो सब जगह हैं, सभी वस्तुओं में हैं, परंतु हम इतना आसक्त अपने देह में हो जाते हैं कि भगवान पर ध्यान ही नहीं जाता है। जो नित्य वस्तु है, जो नित्य संगी है, उनको नहीं पहचानते हैं, और क्षणिक वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, ये बड़ा अज्ञान है, मोह है। तो भगवान अवतार लिए ये सब दिव्य ज्ञान देने के लिए और अपनी माता को ये ज्ञान दिए। यह ज्ञान ज्यों का त्यों श्रीमद् भागवतम में रखा हुआ है। उस ज्ञान से हम लोग भी लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने का यही तरीका है कि हम इन प्रसंगों को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, पढ़ करके समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह व्याख्या की है कि समझने में दिक्कत नहीं होगी। संसार में किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति यदि लोकल भाषा को जानता है या जिस ग्रंथ में जिस भाषा का प्रयोग है उसको जानता है तो समझ जाएगा। श्रीमद् भागवत की व्याख्या और भगवद गीता की व्याख्या बहुत ही सुंदर है। ये माता देवहूति की समस्या नहीं है, वो तो भगवान को पुत्र रूप में पा गई हैं और 33वें अध्याय में वर्णन है कि वे मुक्त हो गई, भगवान के धाम में चली गई। असली समस्या हम लोगों की है। हम लोगों को भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि हम इस आश्रयहीन संसार में इस तरह भटक रहे हैं, कभी किसी को बेटा मानकर, किसी को पत्नी मानकर और किसी आकाश खंड को जो दीवार से घिरा हुआ है उसको अपना घर मानकर और कुछ पैसा के कारण फंसे हुए। हम सोचते हैं कि इस पैसे से हमको ये भोग मिलेगा, इससे हम बहुत चीज खरीद सकते हैं। इस तरह भोगों में फंसा हुआ है जी। कभी कार खरीदता है, कभी कुछ खरीदता है, ये कार भी एक भोग है, मकान भी एक भोग है, जमीन भी एक भोग है। सब छोड़ करके जाना पड़ता है जीव को, कोई वस्तु ले करके नहीं जा सकता है। और पता भी नहीं रहता है कहां जाऊंगा। प्रायः बूढ़े लोग जब मरने की स्थिति में होते हैं तो उनके स्वजन उनके पास आ जाते हैं और बार बार उससे कुछ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। वाच्य मानो पे न ब्रूते, बुलवाते हैं और खास करके ये बुलवाना चाहते हैं कि रुपया पैसा कहीं है बैंक में या जमीन के अंदर कहीं गाड़े हैं तो भूल जाएंगे तो वो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए उसको बुलवाना चाहते हैं कि क्या इच्छा है बोलिए बोलिए। और वो बेचारा बोल नहीं सकता है। वाच्य मानोपि न ब्रूते, बुलवाने पर भी नहीं बोल पाता है। और कभी कोई नहीं पूछता है, वो स्वयं कभी कहता है कि अब मैं जाऊंगा, अब नहीं जी सकता हूं, अब मैं जाऊंगा, तो उस समय भी ये नहीं सोचता है कि ये देह छोड़ करके जाऊंगा। अज्ञान बस सोचता है कि मैं देह हूं। तो कोई भी ये नहीं पूछता है कहां जाएंगे, जाएंगे तो निश्चित है लेकिन कहां, टू वेयर, डेस्टिनेशन कहां होगा, तो पता नहीं। अपने पुत्रों से कहता है बूढ़ा व्यक्ति, अब मैं चला जाऊंगा, तुम लोग शोक मत करना, आराम से रहना। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ कोई आदमी अपने स्टेशन पर उतरना चाहे तो कहे अन्य पैसेंजरों से, आप लोग सुख शांति से बैठे रहिएगा और मैं अब उतरूंगा। ये पूछा है कहाँ उतरेंगे, ये पता नहीं है लेकिन अब मैं उतरूंगा। और रेल के चक्का के अंदर जाएंगे कि कहाँ, ये कुछ पता नहीं लेकिन अब उतरेंगे। तो ये ज्ञान हो जाता है कि अब नहीं रहना है लेकिन कहाँ जाना है इसका ज्ञान नहीं रहता। ये है संस्कृति, ये है संसार, यही दशा सब जगह है। और कभी सुकृत किया तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भी बहुत दुख है, फिर वहां से नरक में, नरक से पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भी भ्रमता रहता है। कभी वृक्ष योनि में, कभी कीड़े मकोड़े में, कभी पशु में, कभी मनुष्य में। मनुष्य में तो बहुत कम चांस रहता है, भगवान की कृपा से कभी कभी मनुष्य देह मिलता है। बहुत वर्षों के बाद लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहुसम भवान्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद यह शरीर मिलता है। मनुष्यम अर्थदम, अर्थदम हमारे प्रयोजन की सिद्धि करेगा, यह देह भगवान से मिला देगा, इसलिए इसको अर्थद कहा गया है। मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर, परंतु यह है अनित्य, बहुत उपयोगी शरीर है, भगवान के धाम की प्राप्ति करा देने में समर्थ है, लेकिन है क्षण भंगुर, ये क्षण क्षण विनाश की ओर जा रहा है। कुलशेखर जी कहते हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, यह शरीर सैकड़ों स्थान में जोड़ा गया, हजारों जगह जोड़ा गया है, एक एक परमाणु जोड़े गए हैं। इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम परिणामी पेशलम, इसका जो पेशल है, इसकी जो सुंदरता है वो परिवर्तनशील है, और पतती अवश्यम ये अवश्य गिरेगा, जब सारे परमाणु बिखर जाएंगे तब एक जगह कैसे रह सकता है, ये गिरेगा, पतती अवश्यम ये अवश्य गिरेगा। तो किमौ सधै क्लिशसि मूढ़ दुर्मते, अरे दुर्मति, अरे मूढ़, तुम विविध प्रकार की औषधियों को पी करके क्यों दुख दे रहे हो, शरीर को और सता रहे हो। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, सबसे सुंदर दवा है हरे कृष्ण पियो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये दवा भी बहुत प्रकार से पीना ये ठीक नहीं है। ये उस समय की बात है जब केवल आयुर्वेदिक दवाओं की चर्चा थी, और अब तो सचमुच के विषैली दवाएं ही शरीर को तंग दुख देती है, एलोपैथिक दवा। तो अरे मूर्ख, क्यों इन दवाओं के चक्कर में पड़े हुए हो, जितना दिन रहेगा शरीर उतना दिन बस एक अमृत को पियो, निरामयम कृष्ण रसायनम पीबा, कृष्ण रसायन पियो, भगवान का नाम लो। यह केवल इसी शरीर को ठीक नहीं रखेगा बल्कि आत्मा को ले जाएगा भगवान के पास, जीवन धन हो जाएगा। तो अपनी सांसारिक स्थिति को समझकर, अपनी संस्कृति को समझकर हमें सावधान होना चाहिए, और बड़े भाग्य से यह अवसर भगवान ने दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर वो भी नश्वर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि इसी शरीर के उपयोग से हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। और शरीर में सब अंगों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक अंग, केवल जीभ का प्रयोग कर देंगे तो हम भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। मेरा सारा शरीर हे नाथ आपसे विमुख है, लेकिन एक जीभ से मैं आपका स्पर्श कर रहा हूँ। आप में और आपके नाम में भेद नहीं है, तो जीभ से नाम लेता हूँ तो आपके साथ हमारा संग होता है, केवल जीभ से। है तुलसी प्रतीत प्रीत प्रभु मूरत कृपा मई है, और मुझे विश्वास है आप कृपामय हैं, आप अवश्य कृपा करेंगे। तो हम में कोई साधना नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपका नाम लेने की योग्यता है, यही एकमात्र साधना है। तो ये दुर्लभ शरीर है, और शरीर का इस्तेमाल हम भगवान की भक्ति में करें, इस तरह से हम शाश्वत स्थान को पाएंगे, नित्य स्थान को, और भगवान की नित्य सेवा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न की अपेक्षा श्रेष्ठ है भगवान का नाम गान।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रश्न बेढंगा होता है तो इसलिए कीर्तन हो अच्छा है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।